बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय में चौथी इकाई का पाठ है सड़क पर दौड़ते ए हमरंग, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे का विचारात्मक लेख है। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1944 को वर्तलाई दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ललित निबंध, कविता, कहानी, उपन्यास, नवगीत, समीक्षा आदि विधाओं में हैं। डॉक्टर दुबे को उनके रचनात्मक योगदान के लिए मध्य प्रदेश साहित्य द्वारा बालकृष्ण शर्मा नवीन, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें अखिल भारतीय डॉक्टर शंभुनाथ सिंह नवगीत पुरस्कार, छत्तीसगढ़ का सृजन सम्मान, श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान और हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार प्राप्त हैं। सड़क पर दौड़ते इहम रक पाठ भौतिकता की पराकाष्ठा के दुष्प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इहा का तात्पर्य है इच्छा, आकांक्षा या तृष्णा। इस प्रकार इहम रक का आशय मृग तृष्णा से है, ऐसी इच्छा जो कभी तृप्त नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती और की वांछा कभी न खत्म होने वाली दौड़ का प्रतिभागी बना देती है। जिस प्रकार मरुस्थल में हिरण दूर कहीं पानी के आभास में निरंतर दौड़ता रहता है किंतु उसे कहीं भी जल नहीं मिलता, उसी प्रकार भौतिक लिप्साएं हैं जिनका कहीं अंत नहीं है। इस भौतिकवाद की अंधी दौड़ में मनुष्यता कहीं पीछे रह गई है। बाजार बंद की तुलना वर्तमान के लॉकडाउन से की जा सकती है। बंद में सड़कें सूनी हैं, प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठा है। लेखक कहता है कि सड़क को आज मैंने जी भर कर देखा, फैली फैली लंबी लंबी सड़क अपने एकांत में गदबदाई सी थी। पंक्तिबद्ध खड़े अशोक वृक्षों के नीचे मनमगन, लेखक इसमें यह कहना चाहता है कि अपनी व्यस्तम जिंदगी में या कहना चाहिए आपाधापी में कभी सड़क के इस सौंदर्य की भव्यता का आभास ही नहीं हुआ। आशय यह है कि हम अपनी व्यस्तता के कारण आसपास की अपनी बहुत निकट की खुशी को, सौंदर्य को अनुभूत ही नहीं कर पाते। बंद का यह समय आत्ममंथन का है, आत्मनिरीक्षण का है। लेखक कहता है कि बंद के बीच वह कई दिनों से भूली बिसरी अपनी प्रिय कविता को याद कर रही है। सड़क के लिए बात कही गई है कि जब उसके आजू बाजू दुकानों का कोई वजूद नहीं था। लेखक का आशय है कि जैसे जैसे भौतिक विकास होता गया वैसे वैसे प्राकृतिक सौंदर्य की छटा क्षीण होती गई, साथ साथ परस्पर आत्मीयता भी कम हुई। जहां सड़कों के माध्यम से लोग अपने आत्मीय स्वजन नाते रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, रिश्तों में मिठास थी, मानवता थी, सब सुख दुख के साथी थे, लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी। लेकिन बढ़ते बाजार या कहने चाहिए कि बढ़ते भौतिक लिप्सा में यहाँ मृग चौकड़ी भर रहे, सब कुछ पाने की चाह में जो भी उनके पास है बहुत कम लग रहा है, अपर्याप्त लग रहा है। निरंतर नई नई वस्तुएं पाने की चाहत में फिर कैसे भी उसे प्राप्त करें, आपराधिक प्रवृत्ति की ओर विश्व को धकेल रही है और उसी का परिणाम है कि तोप तमंचा से आगे बढ़कर जीवाणु हथियारों तक आ गए हैं। इसी भौतिक विकास के लिए जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं वे प्राकृतिक संतुलन की अनदेखी कर रहे हैं। संसाधनों का अतिशय दोहन हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, जल फैक्ट्रियों के अपशिष्ट से विषाक्त हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, अत्यधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद की अधिकता से फसलें पौष्टिक के स्थान पर जहरीली हो गई हैं। लेखक व्यथित होकर कहता है कि यह सब इसलिए हो रहा है कि बेतहाशा प्यास बढ़ रही है, अर्थात इहा और बढ़ रही है और जितनी इसकी पूर्ति की जा रही है यह उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है, जैसे घी डालने से अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। संसाधनों पर आधिपत्य करने की होड़ लगी है क्योंकि यह शक्ति का आधार है, जिसके पास जितनी ताकत वह उतनी ही दबंग। विश्व को अपनी शर्तों के अनुसार नचाने में समर्थ अमेरिका का पेट्रोल उत्पादक देशों पर प्रतिबंध रख समूची विश्व की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना या चीन की विस्तारवादी नीति इसी भौतिकतावादी प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेखक उपभोगवाद की तुलना एक प्राणघाती नशे से करता है, जो न मरने देता है न जीने देता, अर्थात इस भोग वृत्ति को वह त्याग नहीं पा रहा है, वह उसे मोहित किए हुए है और उसकी जितनी पूर्ति करता है तृष्णा उतनी ही बढ़ रही है। जैसे पहले प्राकृतिक बयार ही गर्मी की राहत दिलाने के लिए पर्याप्त थी, फिर क्रमशः हाथ के पंखे, बिजली के पंखे, कूलर और अब एयर कंडीशनर भी कम है। झोपड़ी से लेकर बहुमंजिला अट्टालिका की उपलब्धि अपर्याप्त है। साइकिल, मोटरसाइकिल के बाद कार और अब चार्टर्ड प्लेन की चाहत व्याकुल कर रही है, अर्थात महत्वाकांक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। व्यक्ति को लगता है कि इस आवश्यकता की पूर्ति के बाद सुखी हो जाऊंगा, पर जैसे ही वह उस चीज़ को प्राप्त करता है तो पुनः नई इच्छा जागृत हो जाती है जो उसे चैन नहीं लेने देती। इसीलिए लेखक ने इसको प्राणघाती नशा कहा है। पहले मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति ही प्रमुख थी, अब इच्छा विकराल रूप धारण करती जा रही है। वो धरती और आसमान सबको निगलना चाहती है। गांव भी इससे अछूते नहीं रहे। जो ग्रामीण गाहे बगाहे नमक, मिर्च, तेल जैसी जरूरत के लिए बाजार जाता था, वो भी आए दिन डिपार्टमेंटल स्टोर में अनाप शनाप खरीदारी कर रहा है। बाजार मनुष्य के भीतर घुस गया है। प्रति क्षण दुकानों पर माल बदल रहा है। जो कल नया था वो आज पुराना हो गया, और आज खरीदा है वो कल रद्दी की टोकरी में जाएगा। इस तृष्णा का कोई अंत नहीं, और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है ऋणग्रस्तता। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी आदि की किस्त चुकाता किसान अपने खेत बाजार में ही छोड़ाता है, अर्थात खेत ऋण के कारण बिक रहे हैं। बाजार के चतुर खिलाड़ियों ने ग्रामीण परिवेश व संस्कृति की भी मार्केटिंग कर डाली। देहाती दुनिया की को आलीशान होटल में अजूबे की तरह प्रस्तुत किया जाता है। लोग को शहरियों के लिए मनोरंजन का साधन बना दिया गया है। अतृप्ति के इस संदर्भ में लेखक कहता है कि व्यंजनों का बाजार लगा है। मेनू एक पूरी पोथी जैसा है, और पेट तो पेट है, आकंठ अर्थात गले तक, उसके बाद और खाने की गुंजाइश ना हो। ठूस कर खा लेने पर भी सभी स्वाद जीभ नहीं ले पाती, तो मुंह में उंगली डालकर बमन कर, बमन का मतलब होता है उल्टी करना, को बमन कर फिर शेष व्यंजन ठूसने लगते हैं, अर्थात ये कभी तृप्त नहीं होते और बाजार इन्हें अघाने नहीं देता। ऐशना, इच्छा, अभिलाषा, कामना, तृष्णा, कुछ भी कहो, एक ही चीज़ है, ये ही सभी समस्याओं का मूल है। बढ़ती हुई अनंत कामनाओं के कारण अनेका अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे अंधी प्रतिस्पर्धा, नैतिक मूल्यों का क्षरण, भोग वृत्ति की अतिशयता, आपराधिक प्रवृत्तियों की वृद्धि, अतृप्त अभिलाषा, ऋणग्रस्तता, संसाधनों पर आधिपत्य की होड़, परम सौहार्द और शांति का क्षरण, वैश्विक युद्ध की स्थिति, पर्यावरण प्रदूषण, अवसाद, निराशा, क्रूरता की वृद्धि, मानवता का हनन इत्यादि। इस उपभोगवादी जाल से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए लेखक कहता है कि विवेक ही है वो जो हमको उपभोगवादी जाल से दूर किया जा कर सकता है। शरीर के बूढ़े होने पर भी तृष्णा समाप्त नहीं होती, यह तो केवल संयम से और इंद्रिय निग्रह से ही संभव है। संयम से विवेक जागृत रहता है। सत असत, आवश्यक अनावश्यक का ज्ञान विवेक के द्वारा ही होता है। उपभोगवाद से बचने के लिए अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखना आवश्यक है, तभी हम इस बाजारवाद की दौड़ से और अपनी इहाओं से, अनिच्छाओं से मुक्त हो पाएंगे। धन्यवाद।